हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनय मनस्वी दोनों ही एक साथ अपने प्यार भरे पल और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। ऐसे में उन दोनों का ही घर से बाहर निकलकर कहीं भी जाने का मन नहीं था, लेकिन ऐसे में होटल से इमरजेंसी कॉल आया जिसकी वजह से मनस्वी को जाना पड़ रहा था। तो अनय भी उसके साथ ही जा रहा है क्योंकि वो ऐसे में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता और हर जगह पर हमेशा से ही उसे सपोर्ट करता आया है। तो फिर अब क्यों नहीं, अब तो जब वो उसकी ज़िंदगी, उसका प्यार सब कुछ बन चुकी है और उन दोनों के बीच अब कोई भी दूरियां नहीं है। लगभग आधे घंटे में रेडी होकर वो दोनों एक साथ ही घर से बाहर निकले और इसी बीच अनय ने सोचा कि एक बार वो आदित्य से भी कॉल करके बात कर लेता है, क्योंकि कल रात जब से वो पार्टी से वापस आया उसके यहाँ पर इतना ज़्यादा टेंशन वाला माहौल हो गया था कि अपने आगे उसे आदित्य का ध्यान ही नहीं रहा, जबकि आदित्य के यहाँ पर भी इतनी सारी प्रॉब्लम हुई थी, जैसे कि वो इंटरव्यू, दक्ष चौहान का वहाँ पर आना और फिर उसके बाद वो अटैक, इतना सब कुछ उस एक एनिवर्सरी पार्टी में ही हो गया। अभी वो दोनों कार में बैठे हुए थे और मनस्वी कॉल पर मैनेजर से बात कर रही थी, तभी अनय ने अपना भी मोबाइल फ़ोन निकाला और उस पर आदित्य का नंबर डायल करने लगा। उसने काफ़ी बार आदित्य का नंबर डायल किया लेकिन उसका नंबर इंगेज जा रहा था, इसका मतलब वो किसी से कॉल पर बिजी है, लेकिन किससे ये बात उसे समझ नहीं आई। अब तक लगभग शाम के 5 बज रहे हैं और अनय ने फिर सोचा कि वो उसे थोड़ी देर बाद कॉल कर लेगा। होटल पहुंचकर शायद सच में आदित्य इस वक्त किसी से बात करने में बिजी हो, इसलिए ही अनय ने उसे बार बार कॉल नहीं किया। लेकिन अनय थोड़ा सा परेशान हो गया इस बात को लेकर और वो परेशानी उसके चेहरे पर ही नज़र आ रही थी। तो मनस्वी ने उससे पूछा, क्या हुआ, किसे कॉल कर रहे थे और बात नहीं हो पाई क्या? अनय ने उसकी बात का जवाब दिया, हाँ वो आदित्य को ही कॉल कर रहा था लेकिन उसने रिसीव नहीं किया, पता नहीं किसी और से बात करने में बिजी है शायद। मनस्वी उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, हो सकता है कि वो बिजी होगा, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेना। मनस्वी की बात सुनकर अनय ने भी धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन वो अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है। मनस्वी उसकी तरफ देखते हुए ये बात समझ गई लेकिन उसने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। कार के अंदर, आदि हम कहाँ जा रहे हैं, ये किसकी कार है और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, कुछ तो बताओ, मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, किसका कॉल आया था तुम्हें? आदित्य के साथ वाली सीट पर बैठी सुनैना लगातार उससे ये सारे सवाल करती जा रही है, लेकिन आदित्य के फ़ोन में अभी भी इनकमिंग कॉल ऑन है, इसलिए वो उसे पूरी बात नहीं बता पा रहा है कि आखिर किसने उसे ये सब कुछ करने को बोला, और असल में तो उसे खुद भी कुछ नहीं पता है। लेकिन इतनी देर में सुनैना के सवाल लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो फिर आखिरकार उसने थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा, सुनैना क्या तुम मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं करती हो, 2 मिनट चुप नहीं रह सकती, और मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए ही कर रहा हूँ। आदित्य सुनैना पर कभी भी इस तरह से चिल्लाता नहीं है और ना ही उसे पूरा नाम लेकर बुलाता है, इसलिए सुनैना को बहुत ही अजीब लगा और वो एकदम ही पीछे होकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। आदित्य के इस तरह से चिल्लाने पर उसने जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाया और वहाँ खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। उसे इतना समझ में आ गया था कि वो परेशान है, लेकिन वो दोनों कहाँ जा रहे हैं ये सब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उनकी कार भी नहीं है। उनकी कार खराब हो गई थी, उसका टायर पंचर हुआ था और आदित्य ड्राइवर के साथ टायर चेंज करवा रहा था, तभी सुनैना वहां पर ही खड़ी हुई थी और जब उसे कॉल आया उसके बाद से वो काफ़ी परेशान लग रहा था। वो सुनैना की तरफ आया, उसने उसे एकदम से गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। सुनैना कुछ भी समझ नहीं पाई। उसके कुछ देर बाद ही एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार उनके सामने आकर रुकी। उस कार पर एकदम काले कलर के ही शीशे भी थे और सुनैना ने वैसी कार आदित्य के कलेक्शन में पहले नहीं देखी थी, इसलिए ही वो समझ गई कि ये आदित्य की कार नहीं है और उसके सिक्योरिटी में से कोई भी उन्हें लेने के लिए नहीं आया है। लेकिन आदित्य ने चुपचाप सुनैना को उसमें बैठने के लिए कहा, क्योंकि आदित्य भी उसके साथ ही उसमें बैठ रहा था, तो सुनैना उस वक्त उसमें बैठ गई। लेकिन उसने बैठने के बाद से सुनैना तब से लेकर अब तक आदित्य से बार बार ये सारे सवाल पूछ रही है, लेकिन आदित्य उसे चाहकर भी कुछ नहीं बता पा रहा है क्योंकि अभी वो फ़ोन कॉल ऑन है। आदित्य अपने असिस्टेंट या फिर सिक्योरिटी में से भी किसी को इस बारे में नहीं बता पा रहा है क्योंकि उसका फ़ोन कॉल बिजी है, और दूसरी तरफ से उस लड़की ने उसे धमकी देते हुए कॉल डिस्कनेक्ट ना करने की हिदायत दी है। आदित्य को पहले तो उस पर भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर जब उस लड़की ने बताया कि वो उन पर पूरी नज़र रखे है और इतने दिनों में आदित्य ने जितना भी उसे इग्नोर किया है वो सारी चीज़ उसके मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा बनाकर भरी हुई है, और अगर वो नहीं चाहता कि ये सारा गुस्सा उसकी प्यारी बीवी पर निकले तो उसे उसकी सारी बातें माननी होगी, इसलिए आदित्य इस वक्त एकदम बेबस होकर उसकी सारी बातें मान रहा है। यहाँ तक उसने अपने ड्राइवर से भी कुछ नहीं बताया और चुपचाप ही सुनैना के साथ वहां से निकल गया। कुछ देर बाद उनकी वो ब्लैक मर्सिडीज कार सड़क से बाहर जाने वाले हाईवे पर एकदम तेज रफ्तार में दौड़ रही है और आगे कोई ब्लैक ड्रेस पहने हुए आदमी कार ड्राइव कर रहा है, जिसने इतनी देर में एक भी शब्द कुछ नहीं बोला है। कुछ बोलना तो दूर की बात है, उस आदमी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन आदित्य अच्छी तरह से जानता है कि वो आदमी उन दोनों पर नजर रखे हुए है, इसलिए आदित्य को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने उस कॉल को साइड करते हुए मैसेज बॉक्स ओपन किया और फिर सुनैना के नंबर पर कुछ मैसेज करने लगा। सुनैना के हाथ में उस वक्त उसका फोन नहीं था, इसलिए सुनैना ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान भी खिड़की से बाहर देखते हुए रास्ते पर है। एकदम अनजान रास्ता देखकर सुनैना थोड़ा पैनिक होते हुए बोली, आदि हम कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे घर का रास्ता नहीं है, फॉर गॉड सेक प्लीज मुझे कुछ बता दो, नहीं तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। आदित्य थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखकर बोला, सोना तुम फिर शुरू हो गई, मैंने तुमसे कहा ना मुझ पर भरोसा रखो, आखिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? हम जहाँ भी जाएंगे साथ में ही रहेंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारी प्यारी पत्नी के साथ, बस एक बार फंस जाओ मेरे जाल में मिस्टर सिंघानिया, फिर तुम कभी निकल नहीं पाओगे। दूसरी साइड से कॉल पर कनेक्ट उस लड़की ने उन दोनों की बात सुनकर बोला, क्योंकि उसे उन दोनों की सारी बातें सुनाई दे रही हैं। आदित्य सुनैना को समझाते हुए कहा और उसकी आंखों में इस वक्त बेबसी साफ नजर आ रही है। सुनैना ने वो नोटिस किया और उसे समझ नहीं आ रहा कि आदित्य इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। वो तो हमेशा ही उसके पूछने पर उसके सारे सवालों का जवाब ठीक से देता है, लेकिन अभी वो उसे कुछ भी नहीं बता रहा है। इन सबको लेकर सुनैना बहुत कन्फ्यूज्ड है। उस पूरे हाईवे को पार करते हुए उनकी कार लगभग दूसरे शहर में एंटर कर गई और अब दोबारा से रिहायशी इलाके शुरू हो गए थे और वो उनके शहर के पास वाला ही शहर था, लेकिन सुनैना वहां पर कभी भी नहीं आई है, इसलिए उसके लिए वो एकदम अनजान जगह थी।
आदित्य वहां पर शायद एक दो बार आया होगा किसी काम से, लेकिन इसके अलावा उसे भी वहां के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों के बारे में ज्यादातर रवि, नदीम या अरविंद ही पता रखते थे और उसे इन लोगों से काम की जानकारी हमेशा ही मिल जाती थी। लेकिन इस वक्त इन लोगों के बिना आदित्य बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा है। लगभग 2-3 घंटे की कार ड्राइव के बाद आखिरकार दूसरे शहर के एक 5-स्टार होटल के सामने वो कार रुक गई। आदित्य और सुनैना दोनों ने ही कन्फ्यूजन से एक दूसरे की तरफ देखा और आदित्य ने कसकर सुनैना का हाथ पकड़ लिया। सुनैना थोड़ी सी घबराई हुई लग रही है, लेकिन आदित्य उससे भी ज्यादा परेशान, टेंशन और कन्फ्यूज लग रहा है, इसलिए सुनैना ने इस वक्त और कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है इन सब चीज़ों के बीच, कुछ तो सही नहीं है। लेकिन क्या, और ये बात आदित्य उसे क्यों नहीं बता रहा है, ये बात उसे समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब उसने ये बात पूछना बंद कर दिया है और अपने सेंस का यूज करके और इधर उधर देखकर सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है। और तभी ड्राइवर कार रोककर कार से बाहर निकला और पीछे जाकर उसने उनका गेट खोला, जो कि बाहर से लॉक था। और गेट खुलते ही आदित्य सुनैना के साथ उस कार से बाहर निकला तो वो ड्राइवर एकदम उसके चेहरे के सामने ही खड़ा हुआ था और उसे ऐसे सामने देखकर सुनैना थोड़ा सा घबरा गई। और आदित्य ने भी कहा, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे एकदम सामने क्यों खड़े हो तुम, साइड हटो हमारे रास्ते से। आदित्य ने उसे लगभग डांटते हुए इतना कहा, लेकिन उस आदमी पर लग नहीं रहा था कि कोई भी फर्क पड़ा है। उसने उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे और ना ही उसने अपनी पलके तक झपकाई। उसने बस अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसे आदित्य की तरफ बढ़ाते हुए बोला, रूम नंबर 516 में जाना है तुम्हें, और कोई भी चालाकी मत करना, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे लोग हैं और तुम पर नज़र रखे हुए हैं, इसलिए अगर अपनी और अपनी बीवी की सलामती चाहते हो तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। एकदम स्ट्रेट फेस के साथ बिना किसी एक्सप्रेशन के उस आदमी ने आदित्य को धमकी देते हुए कहा, तो आदित्य ने गुस्से से घूरकर उसकी तरफ देखा और एकदम झपट्टा मारकर उसके हाथ से वो कार्ड उठाया और बोला, हाँ मुझे पता है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और अगर मुझे कोई चालाकी करनी ही होती तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक कभी ना आता। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? नहीं, तुम लोग गलत हो, मैं खुद यहाँ पर तुम्हारे साथ आया हूँ क्योंकि मुझे भी मिलना है उससे जो इतना कायर है और एक फ़ोन कॉल के पीछे छुपकर ये सब कुछ कर रहा है। आदित्य की ये बात सुनकर सुनैना इतना हैरान रह गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अंदाज़ा था कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब इस फ़ोन कॉल से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुनैना ने हम ही से नज़र उठाकर आदित्य की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे लेकर उसे होटल के अंदर ही चला गया। और उन दोनों ही वहां से जाते ही वो ड्राइवर वापस कार में बैठा और कार लेकर वहां से चला गया क्रमशः।